कृष्ण के मुख से बोल रहे थे, मतलब कृष्ण को ऐसे ही आ गए स्त्री भगवान, जैसे भूत किसी के ऊपर आ जाता है। कृष्ण को भगवान नहीं मानते,
बहुत अपराध, बहुत अपराध। जब कृष्ण बता रहे हैं मेरे जन्म कर्म जो भी हैं, कृष्ण सब बता रहे हैं कि मैं,
तो वहां पर जो है ना कृष्ण को भगवान से अलग क्यों कर रहे हैं? इसलिए प्रभुपाद जी क्यों क्यों इस बात को इस बात पर जोर क्यों डाल रहे हैं कि हमारा दिमाग जो है दूषित हो चुका है मायावादी व्याख्याओं से, क्योंकि दूषित है हमारा दिमाग। इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है, है? कृष्ण श्रीमद् भागवत में क्या कहा है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान, मतलब कृष्ण स्वयं भगवान है, मतलब किसी ने उनको भगवान बनाया नहीं। और बहुत से भगवान हैं जो कि बनाए गए हैं, वो बनाए जाते हैं भगवान, जैसे भगवान नारद, भगवान व्यास, भगवान वशिष्ठ, है ना, ऐसे बहुत से भगवान हैं, कहा गया उनको भगवान, लेकिन ये तो बनाए गए हैं। लेकिन कृष्ण को किसी ने भगवान नहीं बनाया, कृष्ण स्वयं भगवान, स्वयं भगवान। इसलिए कृष्ण क्या कहते हैं दसवें अध्याय में, यो माम अजम अनादिम चा वेति लोक महेश्वरम असमूढ़ा समर्देशु सर्व पापे प्रमोचते। जो कृष्ण को मान ले, माम का मतलब मुझको यानी कृष्ण को, जो अर्जुन के सारथी हैं उनको, जो अजन्मा और अनादि समझ ले, वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। भगवान अर्जुन का रथ चला रहे हैं, वही कृष्ण ही भगवान है, हैं? और कोई दूसरा व्यक्ति गीता नहीं बोल रहा है, अर्जुन के जो रथ को चला रहे हैं सारथी हैं वही भगवद गीता सुना रहे हैं, और वही सब देवताओं के स्वामी हैं, हैं? अजन्मा है, अनादि है, प्रकृति से परे परमेश्वर है। तो इस बात को समझना, ये जो है भक्ति वेदांत तात्पर्य, ये भगवत गीता यथारूप है। इसलिए इस बात को हमारे दिमाग में प्रभुपाद जी बैठाना चाहते हैं, क्योंकि सबसे पहली बार श्री भगवान वाच आया, इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यहां पर श्री भगवान कोई दूसरे नहीं है, कौन है, अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण है ना, वही जिन्होंने मथुरा में जन्म लिया था, कारागार में जन्म लिया था, जिन्होंने कंस का वध किया था, वो भगवान है। आगे, भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है, ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी आत्मा, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान श्री भगवान कृष्ण। तो श्रीमद् भागवत में समझाया गया है ब्रह्म परमात्मा और भगवान है? परम सत्य के तीन स्तर हैं। है? ब्रह्म को प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, निर्विशेष सर्वव्यापी आत्मा, है ना, मतलब चेतना जो सब जगह व्याप्त है, है? चेतन शक्ति वो निर्विशेष है, है? तो वो सबसे पहला साक्षात्कार है परम सत्य का, जिसको कहते हैं ब्रह्म ज्ञान। जो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है तो वो चेतन शक्ति को हर जगह देख सकता है, समझ सकता है, चेतन शक्ति है ना, लेकिन ये ज्ञान अधूरा है, इसके आगे परमात्मा का ज्ञान होता है, कोई योगी करते हैं तो वो सबके हृदय में परमात्मा का वास देखते हैं। इसको परमात्मा को प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं, भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तो वो ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान है, है? लेकिन उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, भगवान का, है? या श्री भगवान कृष्ण, कृष्ण का ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है ना, कृष्ण के जन्म कर्म, उनकी लीलाएं, इनका स्मरण करना, इनका श्रवण करना, ये ब्रह्म ज्ञान से और परमात्मा ज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ है। तो ये सब रूपा जी क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि इस श्लोक के पहले क्या है, श्री भगवान वाच, श्री भगवान की व्याख्या कर रहे हैं, भगवद गीता को अगर समझना है तो आपको श्री भगवान ये जो शब्द है इसको समझना होगा। श्री भगवान शब्द का अर्थ क्या है? श्री भगवान जो है निर्विशेष ब्रह्म है, से श्रेष्ठ है और अंतर्यामी परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ये जो है श्री भगवान है। आगे श्रीमद् भागवत में 1.2.11 परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदंती तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं 1 रूप हैं, ये ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। एक ही परम सत्य एक ही है, लेकिन हम कितनी दूरी से देखते हैं है? उस पर निर्भर करता है ना। तो आगे प्रभुपाद जी समझाएंगे उदाहरण दे करके है? जैसे किसी पहाड़ को आप देखते हैं, बहुत दूर से देखते हैं तो वही पहाड़ आपको एक धब्बा जैसा दिखाई पड़ता है, और निकट आते हैं उस पहाड़ के तो आपको पहाड़ दिखाई देता है और बहुत से पेड़ दिखाई पड़ते हैं। फिर और निकट जाते हैं पहाड़ के तो आप पहाड़ पर चढ़ते हैं तो आपको पहाड़ भी और पेड़ भी दिखाई पड़ते हैं और बहुत से पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, घास पत्ते सब दिखाई पड़ते हैं। तो वो ज्यादा पूर्ण ज्ञान है जब आप पहाड़ में पहुंच गए, है ना। तो उसी प्रकार से भगवान का ही अधूरा ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्योति, उनके शरीर से निकला हुआ प्रकाश। और भगवान का उससे थोड़ा ज्यादा ज्ञान परमात्मा के रूप में है कि सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी परमात्मा है। लेकिन भगवान का ज्ञान संपूर्ण है क्योंकि भगवान के शरीर से निकला हुआ जो प्रकाश है वही ब्रह्म ज्योति है और भगवान का ही विस्तार है परमात्मा है सब प्राणियों के हृदय में, है ना। जो व्यक्ति भगवान को जान ले तो वो ब्रह्म को और परमात्मा को अपने आप जान लेगा। ठीक है। जब आप पहाड़ में चढ़ गए तो आप वो जो धब्बा दिखाई पड़ रहा था दूर से आप समझ सकते हैं कि यही वही है पहाड़ी, है ना। और जो पेड़ पौधे दूर से दिखाई पड़ते थे उनको आप और पास से देख रहे हैं, है ना। तो उसमें फिर किसी प्रकार की कमी नहीं है, है ना। इसलिए आगे प्रभुपाद समझा रहे हैं इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप यानी प्रकाश सूर्य की सतह है तथा सूर्य लोक स्वयं है। 3 प्रकार से आप सूर्य का ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे आप इस कमरे में बैठे हैं, दिन के समय में ये लाइट नहीं जलती और यहां पर प्रकाश दिखाई पड़ता है ना। तो आप अगर कहते हैं कि भाई ये सूर्य है, हाँ ठीक है, लेकिन ये सूर्य का ज्ञान बहुत अधूरा है कि नहीं। बिल्कुल आपको सूर्य का ज्ञान तो हुआ क्योंकि आप प्रकाश देख रहे हैं, लेकिन अधूरा ज्ञान है। लेकिन जैसे आप मंदिर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, खुले आकाश में देखते हैं तो सूर्य का मंडल चमक रहा है, आप कहते हो ये सूर्य है, तो आपको ज्यादा ज्ञान हुआ सूर्य का, क्योंकि प्रकाश भी आप देख रहे हैं और सूर्य का मंडल भी देख रहे हैं, ज्यादा ज्ञान हुआ। लेकिन अगर आप सूर्य लोक में पहुंच जाएं सूर्य देवता को देखें आप, तो आपको पूरा ज्ञान प्राप्त हुआ, है ना। इसको प्रभुपाद समझा रहे हैं जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह 9 सिखिया है। 9 सिखिया मतलब बहुत थोड़ा ज्ञान है, बहुत थोड़ा ज्ञान है, बिल्कुल 9 सिखिया उसको सूर्य का बहुत थोड़ा ज्ञान है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। शास्त्रों से पता चलता है कि सूर्य लोक है क्या, एक बहुत बड़ा रथ सूर्य का जो कि मानसोत्तर पर्वत पर वो रथ चल रहा है, उस रथ के 7 घोड़े हैं है? और अरुण नाम का सारथी है और सूर्य देवता उस रथ पर विराजमान है ना। तो कोई भी अगर हम शास्त्रों के द्वारा ये जाने सूर्य का ज्ञान तो ज्यादा संपूर्ण है। आगे जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। ये ब्रह्म ज्ञान है। तो कभी कभी इसी ब्रह्म ज्ञान को ही बहुत महत्व दिया जाता है, जैसे कि एक श्लोक है, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये लोग मतलब गाते हैं, ये श्लोक गाते हैं, मतलब जिस व्यक्ति ने अखंड मंडल के आकार का जो तेज है, प्रकाश है, वो देख लिया है, जिससे चर अचर संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस गुरु को नमस्कार है। तो ये जो है ब्रह्म ज्ञान है। आगे, जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। तो जिसको परमात्मा का ज्ञान हुआ उसको ब्रह्म का ज्ञान तो अपने आप है, पहले से ही है, लेकिन लेकिन भगवान भगवान को वह नहीं जानना है। आगे, जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। परम सत्य का साक्षात रूप को क्या है? कृष्ण है, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमं भगवान, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, है ना, ये परम सत्य है श्री कृष्ण। आगे, अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च अध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्य लोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता, फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। कितना अच्छा बताया प्रभुपाद ने कि वो सूर्य का ही अध्ययन है। अगर आप यहाँ कमरे में बैठ करके भी सूर्य के प्रकाश का अध्ययन कर रहे हैं, है ना, आप देख रहे हैं कि देखो बराबर प्रकाश फैला हुआ है सब जगह, तो ये भी सूर्य का ही अध्ययन है, सूर्य से अलग नहीं है, है ना। और जो व्यक्ति सूर्य का अध्ययन कर रहा है, आकाश में जो सूर्य मंडल चमक रहा है ना, तो भी सूर्य का ही अध्ययन कर रहा है। और तीसरा व्यक्ति जो सूर्य के रथ को जानता है, सूर्य के रथ का वर्णन शास्त्रों में पढ़ता है, वो भी सूर्य का अध्ययन कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा पूर्ण है, ज्यादा निकट है। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की है। अब देखिए, इसी भगवान की व्याख्या अभी तक चल रही है, अभी प्रभुपाद श्लोक में नहीं आए। भगवान ने श्लोक में क्या कहा अभी तक प्रभुपाद ने इस बात को नहीं समझाया, लेकिन भगवान भगवान को समझो, जो बात भगवान कह रहे हैं उसको समझने के लिए पहले आपको भगवान को समझना पड़ेगा कि भगवान कौन है। जैसे कोई व्यक्ति है, जब आप जानते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है तो फिर उसकी बात का महत्व करेंगे, महत्व देंगे, उसकी बात को आप सुनेंगे। कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है तो फिर उसकी बात भी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए प्रभुपाद जी श्री भगवान की व्याख्या कर रहे हैं। तो श्री भगवान की व्याख्या एक तो उन्होंने परम सत्य के तीन रूपों के द्वारा की है, जो कि श्रीमद् भागवत में बताया गया है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। अच्छा, दूसरे प्रकार से व्याख्या कर रहे हैं संस्कृत शब्द भगवान से। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। भगवान का मतलब क्या है? वान, वान का मतलब होता है जिसके पास हो, क्या क्या हो? भग, जिसके पास भग है उसको कहते हैं भगवान, ठीक। ठीक है ना। जैसे किसी के पास धन है तो उसे कहते हैं धनवान, किसी के पास बल है तो उसे कहते हैं बलवान, है ना। और भाग्य, जिसके पास भाग्य उसको भाग्यवान, धैर्यवान, किसी के पास धैर्य है, हाँ गुण है किसी के पास तो गुणवान, है ना, तेज है तेजवान, रूप है रूपवान, है कि नहीं। तो इस प्रकार से वान का मतलब क्या हुआ, जिसके पास हो है? तो भगवान का मतलब क्या हुआ, जिसके पास भग है। और भग छह प्रकार के हैं, भग का मतलब छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं। क्या है, पहला है धन, दूसरा बल, तीसरा यश, चौथा सौंदर्य, पांचवा त्याग और छठवां ज्ञान, ज्ञान और वैराग्य, ठीक है ना। वैराग्य या त्याग एक ही चीज है, जो भी हो हमने दूसरे प्रकार के क्रम से बताया। तो ये छह प्रकार के भंग हैं। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार ये नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन शक्ति आदि है। तो आप किसी व्यक्ति को भगवान कह सकते हैं अगर उसके पास बहुत धन है, किसी को कह सकते हैं, या किसी के पास अगर बहुत बल है तो आप उसको भगवान कह सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि जिसके पास संपूर्ण हो, संपूर्ण धन संपूर्ण बल, ऐसा कोई नहीं है। आप देखेंगे कि उसके अंदर कमी है, वो कमी का अनुभव कर रहा है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, न तो कोई उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण है। ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता 5:1, ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। क्या, ईश्वर परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम्। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेक अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। ब्रह्म संहिता का एक श्लोक उद्धृत किया प्रभुपाद जी ने कृष्ण को परमेश्वर सिद्ध करने के लिए। और श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक है, एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति योगे योगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां वह तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। भागवत प्रथम स्कंद 3rd अध्याय श्लोक संख्या 28। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा तथा निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम है। प्रभु जी क्या बता रहे हैं कि भगवान ही परमात्मा के भी कारण है और ब्रह्म के भी कारण है। सर्व कारण कारणम, संपूर्ण कारणों के कारण कृष्ण है, है ना। तो आप समझ रहे हैं परमात्मा, आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण परमात्मा के कारण है, कैसे कह सकते हैं, कौन बताएगा? भगवान कृष्ण परमात्मा के कारण है, कैसे बताएं?
क्योंकि उनके पास सारा ऐश्वर्य
नहीं, परमात्मा के भी कारण है भगवान कृष्ण, इसको आप कैसे कह सकते हैं? नहीं वो तो है, लेकिन परमात्मा के कारण किस प्रकार से आप समझा सकते हैं, कैसे? क्योंकि भगवान कृष्ण का ही विस्तार है परमात्मा, है ना। भगवान कृष्ण ने ही अपना विस्तार सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में किया है, अपना विस्तार किया है। हम तो नहीं कर सकते अपना विस्तार कि मैं यहां बैठा हूं और इनके साथ बैठ जाऊं उनके साथ बैठ जाऊं, नहीं, लेकिन भगवान अपने धाम में रहते हैं, गोलोक धाम में, ये सब जीवों के साथ भी अपना एक विस्तार कर देते हैं, तो सब जीवों के साथ में एक एक परमात्मा है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं यहां भी बैठा हूं व्यासन पर और हर व्यक्ति के साथ भी बैठ जाऊं, एक एक बन करके हो जाऊं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये विस्तार भगवान करते हैं, तो वो परमात्मा है, उनका विस्तार है। और मूल रूप में जो भगवान है वो अपने धाम में नित्य लीला में मग्न है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि भगवान परमात्मा के भी कारण है। अच्छा, और भगवान को आप ब्रह्म का कारण भी कह सकते हैं। कैसे? ब्रह्म ज्योति जो सर्वत्र व्याप्त है, चेतन शक्ति, उसके भी कारण कृष्ण है, ये आप कैसे कह सकते हैं? हाँ, क्योंकि भगवान के शरीर से निकला हुआ जो प्रकाश है यही ब्रह्म ज्योति है ना। इस तरह से ब्रह्म के परमात्मा के दोनों के कारण भगवान है। आगे, भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अब यहां पर प्रभुपाद इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं, अब इस श्लोक की व्याख्या क्या कर रहे हैं? इस श्लोक में कहा गया है, देखिए इस श्लोक देखिए, भगवान कह रहे हैं कि कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मेशम उपस्थितम, विषम स्थल पर, ऐसे स्थान पर ये तुमको अज्ञान, ये तुम्हारे दिमाग में कूड़ा करकट कैसे आ गया? विषम स्थान पर, विषम स्थान, विषम है मतलब ऐसा स्थान नहीं है कि यहां शोक किया जाए। कहते ना भाई, ये रोने की जगह नहीं है, है ना। आपको भी सोचना समझना चाहिए, अगर अगर रोना भी है तो आपको देखना चाहिए कि कहां पर आप हो। रोना भी है, अगर अगर शोक करना है, दुख मनाना है, तो उसका भी कोई समय होता है, कोई स्थान होता है। ये नहीं हो सकता है कि आप किसी भी जगह आप रो, है ना, लोग क्या कहेंगे, कैसे लोगों के बीच में है, विषम। तो चूंकि भगवान कह रहे विषम स्थल पर, ये तुमको ये अज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, ये ठीक नहीं है, है? तो यहां पर चारों तरफ क्या है, लोग युद्ध के लिए तैयार हैं, और यहां पर तुम जो है ना अब सोच रहे हो कि युद्ध ना करूं, कितनी शर्म की बात। सोचो, भगवान ही कह रहे हैं कि कितनी शर्म की बात है ये, तुम्हें शर्म आना चाहिए, है? कैसे है? और प्रभुपाद जी दूसरी बात और क्या कह रहे हैं कि ये जगह शोक करने की नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान है वहां पर, है? शोक मोह है भयापहा, जहां पर भगवान है वहां पर शोक नहीं हो सकता, वहां पर मोह नहीं हो सकता, है? कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार, है? कृष्ण सूर्य के समान है, माया अंधकार है, जहां कृष्ण वहां माया नहीं हो सकती। तो ये जो माया मोह है जो तुम्हें प्राप्त हुआ, है? ये मेरे होते हुए ये कैसे प्राप्त हुआ? जैसे सूर्य के होते हुए अंधकार कैसे आया, है? सूर्य के होते हुए अंधकार कैसे आया, ये भगवान मतलब बता रहे उसी प्रकार से कि मेरे रहते हुए तुम्हारे हृदय में इतना ज्ञान कैसे आया। ऊपर ऊपर समझा रहे हैं कि भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा सज्जनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है, बहुत बिल्कुल शोभा नहीं देता। चलो ठीक है, सज्जनों के बीच में अगर कोई शोक करे अपने सज्जन संबंधियों का तो ठीक है ना, लेकिन अगर आप मान लो प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाओ और वहां पर आप शोक करो, हाँ, अपने भाई के लिए, अपने लड़के के लिए, है ना, तो कितना खराब लगेगा। तो इतने बड़े व्यक्ति से मिलने गए हो, है ना, तो आप बात करो उनसे जो काम की हो, जो उनसे संबंधित हो, है ना। अब ये थोड़ी कि वहां पर जा गए प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, एक मिनट का अपॉइंटमेंट लिया आपने, है? और वहां पर आप बात करो अपने, है? घर की और दुख की बातें करो कि ये हो गया वो हो गया, है ना, ये ठीक नहीं लगता। तो भगवान है ना संपूर्ण देवताओं के स्वामी हैं, उनके सामने अर्जुन क्या बात कर रहा है, छोटी छोटी बातें कर रहा है कि नहीं। जैसे कि बहुत बड़े धनी व्यक्ति के सामने जाकर के आप कहते हैं मेरा एक पैसा गिर गया जेब से, बड़ा दुखी हो रहे हैं, छोटे जरा से पैसे के लिए आप शोक कर रहे, बहुत बड़ा धनी व्यक्ति करोड़पति के सामने आप शोक कर रहे, भगवान भगवान के सामने अपने सृजन संबंधियों का शोक करना उसी प्रकार से एक करोड़पति के सामने एक भिखारी जाए और शोक करे कि मेरे चावल के दाने गिर गए जमीन में, वो करोड़पति है ना, कि कितनी कृपणता है, कितना ज्ञान है, कितनी कंजूसी है। अरे करोड़पति है तो आपको तो एक बोरी चावल दे देगा, 10 बोरी चावल दे देगा, जरा से चावल के दानों के लिए तुम क्यों रो रहे हो उसके सामने जाकर के। तो विषमे समुपस्थितम का मतलब यह है कि भगवान के सामने अर्जुन अपने स्वजन संबंधियों का शोक कर रहे जिनकी कुछ भी कीमत ही नहीं, बेकार की चीज। जैसी प्रकार से जैसे कोई बच्चा होता है वो रोता है, कांच के टुकड़े कांच के टुकड़ों के लिए रो रहा है, जबकि उसका पिता बड़ा धनी है, बहुत अमीर है, हीरे जवाहरात का स्वामी है, बड़े बड़े रत्नों का स्वामी है, उसके लिए सामने उसका बच्चा कांच के टुकड़ों के लिए रो रहा है कि मुझे ये कांच के टुकड़े नहीं मिल रहे हैं। कांच के टुकड़ों की कीमत क्या है? कभी कभी बच्चे हैं वो रोते हैं कोई कागज का टुकड़ा अगर उसको नहीं मिलता तो रोता है, और जबकि पिता के पास करोड़ों की संपत्ति है और बच्चा कागज के टुकड़े के लिए रो रहा है। उसी प्रकार से अर्जुन की स्थिति है यहां पर, भगवान के सामने रो रहे हैं किनके लिए? अपने सृजन संबंधियों के लिए। जो सृजन संबंधी है ये जो है अनित्य है, तो इस प्रकार से जो है जब भगवान कह रहे हैं कुतः, तो प्रभुपाल लिख रहे हैं अतः कृष्ण ने कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। कुतः मतलब कहां से अज्ञान आया, कुतः आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जा नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। भगवान इसलिए क्या कहा? अनार्य दुष्टम, अनार्य मतलब जो आर्य नहीं है। आर्य किसी व्यक्ति को जो है ना आर्य जब कहा जाता है तो उससे सम्मान प्रकट होता है। किसी व्यक्ति को अगर हम कहें आर्य, हे आर्य आप बैठिए, हे आर्य आप उठिए, तो आर्य शब्द जो है वो सभ्य व्यक्ति का है जो कि मनुष्य के जीवन का महत्व तो समझता है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझता है, और अनार्य मतलब उल्टा हुआ, जो मनुष्य जीवन का महत्व तो नहीं समझता है और केवल खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना बस इन्हीं चीजों को जो है वो समझता है, जीवन का लाभ इसके ज्यादा इससे ज्यादा नहीं समझता कुछ भी। आगे देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है, नते विदुः स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि वे नहीं जानते हैं कि स्वार्थ की गति विष्णु है, इसको नहीं जानते, अपना स्वार्थ वो नहीं जानते, अपने स्वार्थ जरूर सोचते हैं लेकिन अपने स्वार्थ को जानते नहीं, अपने स्वार्थ की गति विष्णु। आगे वे तो भौतिक जगत के बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं, अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से च्युत हो रहा था, उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। अब देखिए जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में सहायता नहीं मिलेगी, इसलिए भगवान ने क्या कहा? अस्वर्गम, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता है तो स्वर्ग प्राप्त करता है, अगर उसको मुक्ति नहीं मिलती है तो कम से कम स्वर्ग में जाता है ना। स्वर्ग की प्राप्ति भी कुछ मनुष्य के जीवन की उन्नति है। तो इसलिए प्रभुपाद जी स्वर्ग की प्राप्ति को क्या करें, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति। तो ना तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और फिर भगवान ने क्या कहा अस्वर्गम के बाद, अकीर्ति कर्म, मतलब कीर्ति की प्राप्ति नहीं होगी। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं ना ही इससे संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। बहुत से लोग हैं मरने के बाद तो नरक में जाते हैं, लेकिन इस जीवन में बहुत ख्याति पा लेते हैं, है ना। बहुत से लोग हैं इस जीवन में बहुत ख्याति पा लेते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई नहीं जानता है कि नरक में कैसी यातनाएं भोग रहे हैं। लेकिन इस जीवन में वो महात्मा बन जाते हैं, बड़े महात्मा, सब लोग उनको महात्मा बोलते हैं। लेकिन वे महात्मा जी नरक में कैसे सड़ रहे हैं कोई नहीं जानता है। लोग महात्मा कह करके उनका खूब गुणगान करते हैं, यशोगान करते हैं, इस बात को कोई समझता नहीं। लेकिन भगवान तो कहना है कि इससे तुम वो भी नहीं प्राप्त कर पाओगे, तुमको वो ख्याति भी प्राप्त नहीं होगी। आगे भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने सुजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। तो ये है, सबसे पहले ही भगवान ने अर्जुन की जितनी बातें हैं उन सबका खंडन कर दिया, सब काट दिया। ये जरूरी है, अगर उपदेश देना है किसी व्यक्ति को, है ना, सही से तो इसको समझ में आए।